मेरे प्यारे आत्मीय युवा साथियों नमस्कार। आज 22 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं चेतना कंवर, आप गंगापुर सिटी राजस्थान से हैं, और दिलीप तिवारी, आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो चेतना और दिलीप, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जब मैं डेट बता रहा था 22 सितंबर, तो मन के अंदर थोड़ा सा कुछ कुछ हुआ। ये कुछ कुछ हुआ वो वाला कुछ कुछ होना नहीं है जिसे हम आम तौर पर कहते हैं कि कुछ कुछ होता है। असली में मेरा जो कुछ कुछ होना था वो 22 तारीख से संबंधित था और कुछ कुछ इस रूप में कि अगले महीने की जो 22 तारीख होगी 22 अक्टूबर, वह एक ऐसी तारीख होगी मित्रों जब इसी वक्त पर, अभी फिलहाल मैं आप लोगों से अप्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा हूं कि कुछ नौजवान साथी आप सब मेरे सामने होंगे, मैं आपके सामने होऊंगा और आमने सामने बात हो रही होगी। तो अचानक दिमाग में वो डेट कौंध गई कि अरे अब तो एक महीना ही बचा हुआ है और इसीलिए कुछ कुछ होने लगा। और मित्रों, मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं इसी तरह की अनुभूति से महसूस कर रहे होंगे, इसी तरह की अनुभूतियों से गुजर रहे होंगे। और अगर गुजर रहे हैं तो मान करके चलिए कि कुछ अच्छी चीज हो रही है। इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर भी वही उत्सुकता है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर भी वही जिज्ञासाएं हैं जो हम लोगों के अंदर हैं कि आप सबसे मिलें, आप सबके प्रश्नों को सुने जानें और उनके समाधान करने की कोशिश करें। मित्रों, एक बात मैं और बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से मेरे पास एक विचार को लेकर, एक प्रश्न को लेकर के मेल आ रहे हैं और उसमें स्टूडेंट सजेस्ट कर रहे हैं कि सर क्लास के दौरान हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ अलग से बातें भी करना चाहते हैं, तो प्लीज उसके लिए समय निकालें। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, जो 15 दिन का वक्त होता है पूरी तरह से आप सबके लिए ही होता है, यानी कि जो क्लास में आए हुए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ही होता है, और बीच बीच के जो गैप होते हैं उसमें पूरा मेरा समय आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए ही निर्धारित होता है। इसलिए उन बातों को लेकर आप मन में कतई कोई आशंका न रखें, आप सब आइए, आप सबका स्वागत है और आप सबसे व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात होगी, बातचीत भी होगी, जिसमें आप अपनी बातें, अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं। क्लास में तो जो बातें होती हैं वो होती ही हैं। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज की सूचनाओं पर, और वो सूचनाएं जो शुक्रवार की होती हैं। कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स कल आपको एज इट इज मिलेंगी। साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दो हिंदी के हो गए, दो इंग्लिश के, टोटल 4 मैगजीन हो गई, 4 हिंदी इंग्लिश को मिलाकर के, कुरुक्षेत्र और योजना को मिलाकर के, तो आपको 4 आर्टिकल भी पढ़ने को मिलेंगे, 2 इंग्लिश के और 2 हिंदी के। और इसके साथ ही आप सबको वीकली क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस कर सके, और जो हमारे क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। यहां मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा साप्ताहिक प्रश्न के बारे में बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट अभी तुरंत तैयारी करनी, जिन्होंने शुरू की है, वो अभी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे लिखने की कोशिश न करें, है ना, वो एक बहुत ज्यादा उससे उनको फायदा नहीं होगा। एक बार आपकी तैयारी पूरी हो जाए, मतलब उतनी मेच्योरिटी तो आप में आ जाए कि आप कुछ लिखने की स्थिति में हैं, तभी लिखने से फायदा होगा, है ना। तो जो जिनको तैयारी करते हुए एटलीस्ट 6 महीने, 8 महीने, साल भर हो गए हैं, वही मुझे लगता है कि इससे फायदा उठा सकेंगे। और वैसे आप ये मत समझिएगा कि सर ने मना किया है, अगर आपकी अपनी इच्छा है तो आप बिल्कुल लिखें, उसे कम से कम नुकसान तो नहीं ही होगा। मुझे डर इस बात का है कि यदि आप उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप निराश न हो जाएं कि नहीं मुझसे तो नहीं बनेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अभी तो आप इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहे हैं ना, विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उसी स्थिति तक तो पहुंचना है, राइट। तो मित्रों, अब हम आइए न्यूज पर आते हैं। तो मुख्य विषय के रूप में आज हम लोग थोड़ा सा सहकारिता पर बात करेंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दूसरे तथ्यों पर बात कर लेते हैं। सामान्यतया फ्रेंड्स, अगर आपने न्यूज सुनी हो तो कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं नहीं थी उसमें जिसको लेकर के हम थोड़े विस्तार से बात कर सके, लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी जिस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और उसमें भी एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने न्यूज में ये सुना कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। उनके साथ ही एक और भी जो लोकसभा के सदस्य थे उन्होंने भी त्याग पत्र दिया। ठीक है, त्याग पत्र दे दिया इसलिए कि अब यहां वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन गए हैं, उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है वो उसके सदस्य बन गए हैं और वहां मुख्यमंत्री हैं। अब आप देखिए कि सामान्य रूप में आपने ये सुना और बात खत्म हो गई, लेकिन उसी न्यूज में आपने ध्यान दिया होगा कि यह भी था कि उन्होंने अपना त्याग पत्र लोकसभा सचिवालय को भेजा। ये लाइन थी, देखिए प्री में यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और यही वो शेड्स या पॉलिटी है जो हमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए और जानना चाहिए और पकड़ने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि प्री में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आप देखें कि ये मामला क्या है, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है, इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं इसी बहाने। मित्रों, इसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है कि जब आप कहीं से भी त्याग पत्र देंगे, कहीं भी काम कर रहे हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में, तो जिस पद से आप त्याग पत्र देंगे आप उस पद के प्रमुख को ही त्याग पत्र भेजेंगे अगर आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं तो, क्योंकि आप उसी के एम्प्लॉई हैं, आपको आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो वही है। तो अब जैसे मान लीजिए कि लोकसभा सदस्य, चलिए अब हम मुख्यमंत्री जी को हटा देते हैं, जैसे एक लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, अब आप देखिए कि लोकसभा का सदस्य एक साथ कितने स्तरों पर काम करता है। एक तो लोकसभा का सीधे सीधे सदस्य हो गया, तो सदस्य किसका है, लोकसभा का, राइट, तो वो कहां काम कर रहा है, लोकसभा में काम कर रहा है, संसद में काम नहीं कर रहा, संसद का एक अंग है लोकसभा और वो उसमें काम कर रहा है, लोकसभा सदस्य है वो। ऑफिशियल डेजिग्नेशन क्या है, लोकसभा सदस्य, यह उसकी पहली पहचान होगी। दूसरी पहचान क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, ये उसकी दूसरी पहचान है, याद रखिए। इसका लोकसभा के सदस्य से कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि लोकसभा में तो दूसरी पार्टी के भी सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या हुई, उनकी राजनीतिक पार्टी हुई, पॉलिटिकल पार्टी हुई, जिसके बैनर पर वो चुनकर आए हैं। और तीसरा मान लीजिए कि कोई सदस्य जो लोकसभा का सदस्य है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी है और मंत्री भी है, मंत्री भी आखिर में पार्टी से ही बनेंगे अगर उनकी सरकार है तो यहां वो मंत्री हो गए, राइट। अब आप देखिए कि अब ये तीन, एक ही व्यक्ति की तीन अलग अलग पहचान हो गई, यहां तीन अलग अलग पहचान है एक ही व्यक्ति की। और अब वो जब रिजाइन करेगा तो किसको अपना त्याग पत्र भेजेगा, तो सीधा सा सिद्धांत है कि वो रिजाइन कर किससे रहा है। अगर वो लोकसभा सचिव, लोकसभा की सदस्यता से रिजाइन कर रहा है तो लोकसभा सचिवालय को भेजेगा, राइट। और अगर अपने वो राजनीतिक दल को छोड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे रहा है, तो बटने चले कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भेजेगा क्योंकि वो पार्टी को छोड़ रहा है। और अगर वो मंत्रिमंडल को छोड़ रहा है, मंत्रिपरिषद को छोड़ रहा है, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको भेजेगा। वो देखिए सामान्य तौर पर व्यवहार में यह होता है कि वो अपना रेजिग्नेशन प्रधानमंत्री को देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की शपथ दिलाते हैं, तो सामान्यतः है कि वो अपना रेजिग्नेशन प्रधानमंत्री को भेजेगा। लेकिन प्रधानमंत्री उनके रेजिग्नेशन को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो राष्ट्रपति है। तो आपने न्यूज में यह सुना होगा कि फिर प्रधानमंत्री उनके उस त्याग पत्र को, यदि वो सहमत हैं कि ठीक है इनका त्याग पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए, तो वो उसे राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेंगे, और यदि चाहे तो प्रधानमंत्री उसे वापस भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं अभी त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री यहां केवल ये निर्णय लेते हैं कि तुमको त्याग पत्र देने की जरूरत है या नहीं है, उसे स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार उनको नहीं है। तो मित्रों, ये जो थोड़ी सी बारीकियां हैं ये हमें मालूम होनी चाहिए, राइट। चलिए इस पर थोड़ी सी बात हो गई। मित्रों, मेरे पास वक्त नहीं है, अदरवाइज एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल, एक्सेप्शनली नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल मेरे पास है, मेरे सामने दैनिक भास्कर में शशि थरूर जी का आर्टिकल है, और शशि थरूर जी का तो मैं फैन ही हूं। जब भी उनके कोई आर्टिकल होते हैं, सवाल ही नहीं है कि मैं न पढ़ूं, चाहे किसी भी विषय पर हूं। मैंने इन्हें सुना भी है और हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है, नो डाउट अबाउट इट। जो जब भी लिखते हैं कुछ न कुछ नई चीज देते हैं, और बहुत ही मेहनत के साथ वो अपना लेख तैयार भी करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि इनके लिखे गए कुछ पॉइंट्स पर मैं आप लोगों से बातचीत करूं, लेकिन वक्त नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा कि आप सब इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गजब के उन्होंने आंकड़े दिए हैं, वो आपको नोट करके अपने जेहन में दर्ज कर लेने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे आइडियाज भी दिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के, एंजल इन्वेस्टर्स को लेकर के, स्टार्टअप्स को लेकर के। अब जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, भले ही वो एक एक आइडिया ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल आइडियाज हैं, उन्हें भी आपको नोट कर लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेंस की अच्छी तैयारी करनी है तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और टॉपिक्स को लगातार आपको अपडेट करते रहना होगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, कोऑपरेटिव मूवमेंट। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करूंगा। आपने न्यूज में सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महाराष्ट्र के जो एक बहुत प्रसिद्ध सहकारी आंदोलन के प्रणेता रहे हैं माधव राव जी, उनके प्रोग्राम में वो गए थे, और वहां उन्होंने, मतलब उनका यहां दिल्ली में हुआ था, तो उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सच पूछिए तो आपके सिलेबस के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, हुआ ये कि भारत जब आजाद हुआ, कोऑपरेटिव मूवमेंट की जो शुरुआत थी वो अंग्रेजों के समय में थोड़ी बहुत हो चुकी थी, इस तरह के एक्ट आ गए थे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो जो नेहरू जी थे वो समाजवादी विचारधारा के थे, इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी भी हमारे यहां उससे शुरुआत हुई, अर्थव्यवस्था की। और उस समय रूस तो हमसे पहले ही वहां क्रांति हो चुकी थी, तो रूस में जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, वो सामुदायिक विकास की थी, कोऑपरेटिव पर चल रही थी। यानी कि निजी संपत्ति खत्म कर दी गई थी, तो अब भूमि है, तो भूमि किसकी संपत्ति है, तो भूमि राज्य की संपत्ति है, और उस पर लोग काम करेंगे, मजदूर किसान उस पर मिलकर काम करेंगे, और फिर मिलकर उसका उत्पादन करेंगे, और मिलकर उसका लाभ लेंगे। ये कोऑपरेटिव है, सहकारी, यानी मिलजुल कर करना। और सच पूछे तो ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो रशिया ने लागू किया। आप अगर प्लेटो को पढ़ेंगे तो प्लेटो ने जो कम्यून की बात कही थी वो इसी तरह की थी। हमारा जो किसी भी दुनिया की किसी भी आदिम संस्कृति को देखिए, जो कबीले होते थे वहां भी संपत्ति सार्वजनिक ही होती थी, तो बाद में फिर निजी संपत्ति का विकास हुआ। कार्ल मार्क्स ने जो बात कही कि राज्य की संपत्ति होगी, तो वो बेसिकली कोऑपरेटिव की तरफ ही इशारा कर रहे थे कि व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसमें से उसके हिसाब से उसको उसका भाग मिल जाएगा। तो चूंकि नेहरू जी रशिया से समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने भारत में भी सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत सहकारिता की नींव रखी। और उनको ये लगा कि अगर हमारे किसान या जो गांव के लोग हैं सहकारिता के आधार पर काम करें, तो एक तो इनका बाहर से शोषण नहीं होगा, दूसरे लोग शोषण करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप बिचौलियों को कैसे खत्म कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान के साथ दिक्कत यह है कि वो चीजें तो रिटेल में खरीदता है और थोक में बेचता है। आप देखिए, उसे बीज खरीदना है, यूरिया खरीदनी है, तो 2 क्विंटल यूरिया लेकर के आएगा, 1 किलो बीज लेकर के आएगा, तो रिटेल में खरीद रहा है ना। और जब उसका उत्पादन हो जाता है, मान लीजिए उसके पास 50 क्विंटल गेहूं हो गया, तो 50 क्विंटल गेहूं एक साथ बेच देगा, तो खरीद रिटेल में रहा है, मतलब महंगा खरीद रहा है, और बेच होलसेल में रहा है, सस्ता बेच रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि क्या ये उलट नहीं सकता कि वो थोक में खरीदे और रिटेल में बेचे। अब किसान कैसे थोक में खरीदेगा, लेकिन अगर उसके पास कोऑपरेटिव की ताकत है, यानी कि 20 किसान एक साथ मिलकर उनको जितने यूरिया की जरूरत है वो खरीदें, तो उनको सस्ता मिल जाएगा और रिटेल में बेचे, फिर अपना मार्केट उन्होंने तैयार कर लिया है, वहां वो धीरे धीरे बेचे। तो आप देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव की ताकत, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे आइडियाज दिए। तो मित्रों, निश्चित रूप से भारत में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत हुई उतनी सफलता नहीं मिल पाई। जगह जगह बने टूटे, खत्म हुए, कहीं राजनीति में चीजें उझल गई, कहीं मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाया तो कोऑपरेटिव मूवमेंट फेल हो गए, लेकिन तीन क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत सक्सेस दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक तो शक्कर की मिले, चीनी मिले हैं, महाराष्ट्र में तो ये बहुत ही सफल है। चीनी मिल जो गन्ना उत्पादक जो किसान है वो उसके शेयर होल्डर है, समझ लीजिए एक कंपनी है, शेयर होल्डर है। गुजरात में जो मिल्क दूध दुग्ध उत्पादक जो लोग हैं, अब जो अमूल इतना बड़ा जो इतनी बड़ी जो कंपनी है मूल, वो कोऑपरेटिव है। और जो वर्गीय कुरियन है, मतलब वो तो गजब के आदमी, उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, क्या गजब के व्यक्ति है। उन्होंने सहकारिता के आधार पर इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी। मिल्क के क्षेत्र में सक्सेस है और इसके बाद बैंकिंग के सेक्टर में सक्सेस है। अब मुश्किल यह है कि ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है हमारा, इसमें इसका एक जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहेगी या इकोनॉमी का जो बेस बनाया गया वो ये बनाया गया कि जो अगर फायदे में है कंपनी तो कंपनी का होगा और अगर नुकसान में है तो वो सरकार का होगा। ये जो मामला था इसने थोड़ा गड़बड़ किया और कोऑपरेटिव मूवमेंट नुकसान में जाने लगे। तो दोस्तों ये एक ऐसा विषय है जिस पर अब नए तरीके से सोचे जाने की जरूरत है और कल दूरदर्शन पर इस पर बातचीत भी आई थी, सहकारिता विभाग के जो सचिव हैं उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक और भी एक अच्छी बात कही कि अभी ये हमारे जो स्व सहायता समूह हैं, तो स्व सहायता समूह क्या है, उसी का छोटा सा हिस्सा ही है ना, उसमें भी तो 20-25 महिलाएं आपस में मिल करके और फिर कुछ कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी एक सहकारिता का नमूना है और स्व सहायता समूह हमारे बहुत सफल हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा डेटा है जो आपको नोट कर लेना चाहिए और वह यह है कि भारत में अभी बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि 800,000 सहकारी समितियां हैं, 800,000 और जिसमें 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 40 करोड़ लोग तो काफी बड़ी संख्या है। मतलब हमारी आबादी अगर 125 करोड़ की हम टोटल मान लें तो आप समझ लीजिए कि लगभग 30% लोग इससे जुड़े हुए हैं, 40% लोग जुड़े हुए हैं कह लीजिए, 30% ही कह लीजिए कि इससे जुड़े हुए, 25-30% तो किसी भी मायने में कम वो नहीं है। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा मित्रों, मैं तुरंत ही बोल रहा हूं कि 40 करोड़ तो 40% हो जाते 100 करोड़ में, थोड़ा सा 125 करोड़ है तो थोड़ा सा कम हो गया है, तो 30% मोटे तौर पर मान लीजिए। चलिए खैर इंपॉर्टेंट यह है कि 800,000 समितियां हैं जिसमें 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे शहद का ही क्षेत्र है, मधुरस का क्षेत्र है, तो इसमें भी कोऑपरेटिव इस तरह से काम किया जा सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव मूवमेंट काम कर सकते हैं। तो एक अच्छा विषय है, बहुत ही प्यारा विषय है, इस पर आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं रोजाना की तरह और आज संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, कोई बात नहीं, दो दिन तक तो फिर आपको कोई प्रेस क्लिपिंग्स मिलनी भी नहीं है सिवाय योजना कुरुक्षेत्र के आर्टिकल के, लेकिन कुछ क्लिपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत नए किस्म के भी हैं, उन पर आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और अब मैं आता हूं ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ नौजवान साथियों के नाम हैं, योगेश कुमार, विनय कुमार मीना, महेंद्र कुमार कौशिक जरहागांव छत्तीसगढ़ से, उत्कर्ष दीप पटना बिहार से, सुबोध कुमार सिंह बक्सर बिहार से और राजश्री भिलवारे इंदौर मध्य प्रदेश से। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं दो दिन की इजाजत लेते हुए आप सबसे विदा चाहूंगा और साथ ही हम एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आप सबके लिए बहुत ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं कि ये दो दिनों का वक्त आपका बहुत ही खुशी के साथ गुजरे। तो मित्रों अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।